সবাই এক সখী গণের উহা অধিকার, সখী হইতে হয় সব লীলার বিস্তার। ইন দিস মধুর রস
and only from them can these pastimes be expanded.
How? Kaise? Sabe ek sakhi gane riha adhikar. In this lila. Even Subal Siddham, Madhumangal cannot so much enter. They can come out of Kunja, not entering. Only gopis can enter and serve them, conjugal, otherwise anyone cannot do. So the service of Radha and Krishna conjugal for a male shape, it is absurd. Only by the grace of gopis, anyone can attain this highest topic of love and affection. How? When? Radha and Krishna conjugal are for swimming in Vrindavan at Radha Kunda. Any Shakha cannot go there. Mother Yashoda Nanda Baba can go, or Vishubhanu Baba, Siddham even, the brother of, they cannot go into this leader. So it is very, very
mysterious.
This lila, only Srimati Radhika is there, one, Parashakti. But he has been
manifested
in so many gopis, even in Chandravali and Padma and all others. Also, Mukhara, like Jatila, all. And he sees playing. If there are not those Nasakhi, then it will be like a creeper without any leaf and flower, fruits and manjari. Anyone cannot be attracted to that creeper. And when that creeper with so many green leaves, flowers and fruits and manjari, playing in the air, dancing in air, then all will be attracted. So fragrant and so sweet. So if there are no sakhi, Madhur Lila will be like zero. Only sakhi are doing all these services. So only these sakhi are allowed to go enter in there. Anyone can enter by the grace of gopis only. No one can enter in this mysterious service of Radha and Krishna conjugal. Sakhi binai ei lila pusht nahi hoy, sakhi lila bistariya sakhi arsar. Mali sakhis are serving and they are, you should read.
Without the gopis, these pastimes between Radha and Krishna cannot be nourished. Only by their cooperation are such pastimes broadcast. It is their business to taste the mellow.
No explanation? Nothing.
No purpose.
And purpose?
Next book of Prince Purpose. Next book.
Achcha. Sakhi binai ei lilar anyer nahi gati, sakhi bhave je tahar kare anugati.
Without the help of the gopis, one cannot enter into these pastimes. Only he who worships the Lord in the ecstasy of the gopis, following in their footsteps, can engage in the service of Sri Sri Radha Krishna in the bushes of Vrindavan. Only then can one understand the conjugal love between Radha and Krishna. There is no other procedure for understanding.
There is no other procedure. Nothing, no. Only this process. Chaitanya Mahaprabhu has come to sprinkle this thing, very thing, not other thing. Not bhakti. Not nodha bhakti. What? This mood. But this mood he has preached through this bhakti, nodha bhakti. Or panchadha bhakti. Chaitanya Mahaprabhu. Before Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu purve bhakti chilo. Ramanuj, Madhvacharya, Vishnu Swami, Nimbadi, they preached this bhakti. Before that, Narada has preached this bhakti, but not so deeply, not so deeply, as Chaitanya Mahaprabhu has preached himself. So, those who will, you should read.
Purpose. The means for returning home.
Try to listen here, not for all, only those who are interested. Some test. Otherwise they cannot take all these things in their mind. They should only distribute books, take contributes of money, and do other functions.
The means for returning home, going back to Godhead, is devotional service. But everyone has a different taste in the Lord's service. One may be inclined to serve the Lord in servitude, dasyura, fraternity, sakhyara, or paternal love, vatsalya ras. But all these cannot enable one to enter into the service of the Lord in conjugal love. To attain such service, one has to follow in the footsteps of the gopis, in the ecstasy of sakhibhava. Then only can one understand the transcendental mellow of conjugal love. In Ujjvala Nilamani, Srila Rupa Goswami advises, Prema Lila Viharanam Samyak Vistarika Sati Vistramba Ratna Pratisha. One who expands the conjugal love of Krishna and his enjoyment among the gopis is called a sati. Such a person is a confidential gopi in the conjugal affairs. Such assistants are like jewels in the form of Krishna's confidence. The actual business of the sakis is described thus in Ujjvala Nilamani. Mita prema gunakirti sayora sakti karika abhisaro dvayoreva sakya krishne samarpanam nama svasana nepatyam vidayodhyasapatavam Chidra samriti retasya patya de parivanchana siksha sangamanam kare sevanam vrajanadidhi tayo dvayo rupalamva sandesha pechanam tatha naika prana samraksha prayatna dhyasati kriya. In the conjugal pastimes of Krishna, Krishna is the hero, Nayak, and Radhika is the heroine, Naika. The first business of the gopis is to chant the glory of both the hero and the heroine. Their second business is to create gradually a situation in which the hero may be attracted to the heroine and vice versa. Their third business is to induce both of them to approach one another. Their fourth business is to surrender unto Krishna. The fifth is to create a jovial atmosphere. The sixth, to give them assurance to enjoy their pastimes. The seventh, to dress and decorate both the hero and the heroine. The eighth, to show expertise in expressing their desires. The ninth is to conceal the faults of the heroine. The tenth, to cheat their respective husbands and relatives.
Samiji has written this.
Yeah.
What they should do? They should hear or they should burn this book.
The 11th, to educate. The 12th, to enable both the hero and the heroine to meet at the proper time. The 13th, to fan both hero and heroine. The 14th, to sometimes reproach the hero and heroine.
I think that Samija has not written, I have written there. So this book is not authentic.
You have sent him and he has been saluted.
The 15th, to set conversations in motion. The 16th, to protect the heroines by various means. Some material sahajiyas, who cannot actually understand the pastimes of Radha and Krishna, manufacture their own lifestyle without referring to authority. Such sahajiyas are called Sakiveti, and sometimes they are called Gauranagari. They believe that the material body, which is fit to be eaten by jackals and dogs, is enjoyable for Krishna.
This is men's objection, that we should not follow these things. But if anyone who is hearing Srimad Bhagavatam, hearing Chaitanya Charitamrita, hearing the books of Goswami, it is sure that in some days he will have some taste in this greed. And if always he are doing, making money, and like karma is doing everything, every fat, life, and lakhs time they will not have this. Yadi amader mot mandir ei bhakti sadhaner jonno and prachare jonno kara hoyeche. Our mot and mandirs have been created for what thing? Only to do sadhan and bhajan like this and preaching. If there is no sadhan bhajan, jodi sadhan bhajan amader ei rokom na hoy, a preaching o na hoy, khali shudhu khawa dabar adda jodi hoy, tale mothar ki hobe je bortoman ajkal hocche parospor ladai jhagda maramari. Now the conditions of all must not center for these things, to learn and to sadhan, quarreling each other, like ISKCON also. Though have the ultimate goal of life and sadhan bhajan, they will know all these things. Gradually they will develop their Krishna consciousness, love and affection for Krishna gradually. And doing bhajan like Sanatana Rupa Goswami and all Raghunath Das Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada. We should try to know all these things. This is actually the object of the life. Without following, we cannot progress an inch in bhakti realm. Bhakti rajya mein nahi pravesh kar. Bade bade buddhiman hone par aur vaishnav ki kripa hone se hi cheezon ko samjhenge. Chaitanya Mahaprabhu is gopi bhav ko dene ke liye aaye. और ये क्या चीज है समझना बहुत कठिन है. टू रियलाइज ऑल दिस थिंग्स इट इज वेरी हार्ड. इफ वी आर ऑलवेज नॉट गिवन आवर सेल्फ इन द गाइडेंस ऑफ एनी गुड वैष्णव क्वालिफाइड वैष्णव लाइक दिस. सो आई टोल्ड यू ओनली हियर इन द प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु नियर गंभीरा nearer to Gadadhar Pandit Tota Gopinath, who was actually Srimati Radhika. So I told in a very brief these things. Those who are lucky, they will try to realize these things and practice in this life. So I am concluding by this. मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूँ आज यहीं तक. When Chaitanya Mahaprabhu used to go to darshan of Jagannath Dev, what he used to see? No Baladev, no
Subhadra,
no Krishna, this shape, only what? And he used to embrace him and he used to run away, senseless. He always used to hear the flute, sweet flute,
the sound of flute.
And that is why he used to go to
Jagannath
Balaram. mandir, temple, or to jump in sea, sometimes in Jagannath Vallabha Vatika, always thinking in this mode. So we should try to hear and to realize these things. So, I'm finishing my class today.
पढ़ने से भी फायदा होगा या खाली सुनने?
जब नहीं होगा तो फायदा, किंतु सुनने से जो लाभ होगा वो पढ़ने से नहीं. What we will attain from
listening,
hearing from any high class of Vaishnava, we cannot attain by reading Bali. They cannot give all these impressions. There may be so many doubts and we will be like Sahajiya Sakhi. Gaur Pramananda Hare. हाँ, हमारा स्नेह आशीर्वाद आप सभी लोग ग्रहण करें. आप लोग कितने हैं? कितने आदमी आप लोग हैं और किसके घर पर हैं? हमारे विनोद बिहारी गौड़ियों के मठ में हैं न? कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक. बहुत अच्छा, तो आरंभ कर दूं? गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय गोविंदाय नमो नमः. सबसे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए कि बिना भक्ति के जीवन पशु जीवन है. खाना पीना, भोग करना, बाल बच्चों के साथ में रहना या कुछ शुभ कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है. हम लोग स्वरूपतः भगवान के दास हैं, दासी हैं. हम माया के वजह से इन सब तत्वों को भूल करके संसार में पशुओं की भांति सुख भोगने में, उसे एकत्रित करने में तत्पर हैं. बड़े सौभाग्य से किसी संत महापुरुष का भेंट होता है, उस संग में हम अपने जीवन का स्वरूप समझते हैं. हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ, हम कुछ समझते हैं. भगवत आराधना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, किंतु यह भगवत भजन भी बिना साधु संग के और बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता. इसलिए पहले साधु संग की आवश्यकता होती है, जिसमें कृष्ण तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, भक्ति क्या है, उपासना क्या है, इत्यादि का ज्ञान हमें होता है. इसके बाद में दूसरा होता है गुरु पादाश्रय. शास्त्रों में गुरु की अनंत महिमा का वर्णन किया गया है. बिना सद्गुरु चरणाश्रय के भगवत भजन के राज्य में प्रवेश करना सर्वथा सर्वथा असंभव है. इसलिए भक्ति के अंगों में जहाँ रूप गोस्वामी ने 64 प्रकार की भक्ति का अंगों का उल्लेख किया है, वहाँ पर सबसे पहले सद्गुरु पदाश्रय का भी उल्लेख किया है. जो लोग बिना गुरु के ही शास्त्रों में किसी पुस्तक में पढ़ लेंगे और भक्ति हो जाएगी, हरिनाम करेंगे, इसे अधिक कुछ लाभ नहीं होता, कुछ सुकृति मात्र हो सकती है. किंतु गुरु के कृपा से जितने प्रकार के अनर्थ हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं. इसके लिए कोई विशेष चेष्टा नहीं करनी पड़ती है. और साथ ही अनर्थ जब दूर हो जाते हैं तो भगवान का अनुग्रह भी उनको अनुभूति का विषय हो जाता है, ये भगवान कितने कृपालु हैं. इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, जो मंत्र स गुरु साक्षात, जो गुरु स एव हरि. अर्थात जो मंत्र है वही गुरु है और जो गुरु है वे साक्षात हरि हैं.
गुरु जिस पर प्रसन्न होते हैं स्वयं हरि भी उन पर प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र में बतलाया गया जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य प्रसादान नगति कुतोपि, भगवान की प्रसन्नता ही गुरु की प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है। यदि गुरु प्रसन्न है तो भगवान भी प्रसन्न है, यदि भगवान किसी कारण से अप्रसन्न भी हो गए तो गुरु उन्हें प्रसन्न कर सकता है, और यदि गुरु प्रसन्न नहीं है तो भगवान उस पर प्रसन्न कभी नहीं हो सकते हैं। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम शब्दे परेश निष्णातम ब्रह्मन उपसमाश्रयम्। इसलिए श्रीमद्भागवत में कहा गया है गुरु शब्द ब्रह्म में परब्रह्म में निष्णात अर्थात वेद शास्त्रों के यावतीय सिद्धांत को हृदयंगम कर रहे किए हुए हों और शिष्यों के समस्त शंकाओं को जो दूर कर सकते हैं ये गुरु का पहला लक्षण। किंतु गुरु का स्वरूपगत लक्षण यह है कि उनको भजन करते 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 भगवान के विषय में कुछ अनुभूति हो गई है, इसलिए निष्णात माने अनुभूति समझे, और निष्णात हो जाने के कारण अनुभूति हो जाने के कारण उनको विषयों में सर्वथा अलिप्ति आ जाती है अर्थात विषय में उनकी रुचि नहीं होती है। यहाँ पर एक और भी शिल जी गोस्वामी ने बतलाया है कुछ क्या, जी गोस्वामी ने भगवत तत्व के उपदेश देने वाले गुरुओं को दो श्रेणी में रखा है। खूब अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करेंगे, विशेष बात यह है कि यह बहुत विषय गंभीर है और मैं संक्षेप में आप लोगों को बतला रहा हूँ। भगवत तत्व के जो उपदेश देने वाले जो उपदेशक हैं दो प्रकार के हैं, एक का नाम सराग है और दूसरे का नाम है निराग। संसार में धन की का लोभ है, विषय सुखों को भी भोगने की कामना हृदय में है और शास्त्रों के कुछ उपदेशों को रट लिए हैं और फिर संसार के भोगों को उनसे संग्रह करने के लिए रुपये पैसे भोग विलास और जो उपदेश देते हैं इनको सराग वक्ता कहते हैं, अर्थात तो विषयों में आसक्ति अराग है इनको। और दूसरे होते हैं अच्छा तो ये जो सराग वक्ता हैं इनके उपदेशों का स्थायी भाव प्रभाव नहीं होता है। आप लोग देख ही रहे हैं इसको, उनके या दूसरे गुरु जो लोग हैं भगवान की अनुभूति नहीं है और वे सराग वक्ता हैं, धन इत्यादि का लोभ है, ऐसे लोगों के उपदेशों का स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। सुना कुछ दिनों के बाद में उनके प्रति श्रद्धा भी नष्ट हो जाती है और भक्ति की प्रति जो श्रद्धा थी वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए इन सराग वक्ताओं के उपदेश से अधिक लाभ नहीं होगा। सरस और सारग्राही भगवत भक्ति अनुभूति से संपन्न भगवत भक्त ही निराग है, जिनका संसार में अब रुपये पैसे प्रतिष्ठा धन इज्जत इत्यादि से कोई भी संबंध नहीं है, भगवान की कथाओं में परम अनुरक्त हैं, सरस है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, विशेष करके सब समय नाम संकीर्तन में मत्त रहते हैं, ऐसे यदि वक्ता हो निराग तब तो हमारा स्थायी कल्याण होगा, वो भक्ति कमेगी नहीं, न गुरु गिरेगा और न तो भक्त भक्ति से दूर हो जाएंगे। इसलिए ऐसे समझ बूझ करके ऐसे निराग वक्ता निराग गुरु से संबंध रख करके हरि कथा सुन करके उनसे दीक्षा लेना आवश्यक है। इसीलिए दूसरा बतलाया गया है कि यदि किसी कारण से हमने पहले सराग गुरु को ही गुरु मान लिया जो अर्थ इत्यादि के लिए पिपासा में व्यस्त रहते हैं, तो यदि मान लिया कि ऐसे गुरु को आपने कर लिया और पीछे से किसी प्रकार से साधु संग हुआ और आपने समझा जो तो हमने गुरु तो ठीक नहीं किया, ये तो संसार के धन इत्यादि में लुप्त हैं और कामों में व्यस्त हैं, शुद्ध भक्ति की अनुभूति नहीं है, तो गुरु अवलिप्तस्य कार्या कार्य अजानता उत्पत्त प्रतिपन्नस्य परित्यागो एव विधीयते। उन्हीं के लिए श्रीमद्भागवत में ऐसा लिखा गया है कि यदि गुरु किसी प्रकार से वैष्णव विद्वेषी हो गए, वैष्णव का द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, शास्त्र का विद्वेष करते हैं, शास्त्र के वचनों को मानते नहीं हैं, उन्नति भजन के उन्नति के क्रम को अस्वीकार करते हैं और भक्ति के प्रथम स्थिति में ही बस लिपटे पिपटे रह करके धन कामना इत्यादि में मत्त रहते हैं, भक्ति के विद्वेषी हैं, रागानुगा भक्ति के विद्वेषी हैं, विषय भोगों में लिप्त हैं, कर्तव्य के संबंध में अकर्तव्य के शब्द में जिनका विवेक नहीं है, मूढ़ और भक्ति के अतिरिक्त दूसरे दूसरे कामों में रहते हैं और अपने शुद्ध गुरु को प्रत्याग करके करते हैं, ऐसे गुरुओं को छोड़ करके विधि पूर्वक वैष्णव गुरु से दीक्षा लेने की शास्त्रों में विधि भी देखी जाती है। इसीलिए स्पष्ट रूप से हरि भक्ति विलास में भी कहा गया अवैष्णवोपदिष्ट मंत्रेण निरयम ब्रजेत। यदि कोई व्यक्ति अवैष्णव से किसी प्रकार से दीक्षा इत्यादि लेकर के कुछ भजन की चेष्टा कर रहा है तो वो ग्रहण करने वाला और देने वाला दोनों व्यक्ति ही नरकगामी होती हैं। इसलिए वैष्णव गुरु को करना उचित है। यदि पहले अवैष्णव गुरु को भी कर लिया है तो कोई हर्ज नहीं, उसको प्रत्याग करके शुद्ध गुरु कर, क्योंकि हमें भक्ति की आवश्यकता है, हमें किसी व्यक्ति से किसी लोभ से धन संपत्ति की हमें लालसा नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा से जैसे हमें मिल रहा है उसको हम भोग कर रहे हैं, हमें जरूरत है शुद्ध भक्ति की। ये शुद्ध भक्ति जिस व्यक्ति से मिले उसे हमको दीक्षा देना है। हमने पहले एक कुआं खोदा और कुएं में पानी अब गंदा हो गया 10 वर्ष के बाद में, तो फिर भी उसी कुएं का हम पानी पिएंगे, हमारे बेटे भी पिएंगे, तो वो तो बहुत से रोगों के शिकार हो जाएंगे, अंत में मरेंगे। इसलिए ऐसा नहीं, इसलिए शुद्ध भक्ति की हमें आवश्यकता है, इसलिए शुद्ध वैष्णव और शुद्ध गुरु का ही संग और उनसे ही दीक्षा लेने से हम शुद्ध भक्ति में क्रमशः बढ़ करके जब आगे बढ़ेंगे तब हमारी हमारा संसार की आसक्ति कम जाएगी, दूर हो जाएगी, अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे और कृष्ण के चरणों में क्रमशः आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव यहाँ तो उदित होगा। यदि हमने क्रम का उल्लंघन किया तो हमारी भक्ति क्रमशः श्रद्धा से निष्ठा, अनर्थ इत्यादि ये सब दूर होने की कभी जन्म जन्मांतर में संभावना नहीं। ऐसे व्यक्ति ही जो कि इनमें रचे पचे रहते हैं, सब समय भक्ति से गिर जाते हैं, यहाँ तक कि हजारों गुरु हजारों शिष्यों को किया और फिर न जाने कहाँ किस गर्त में कि चले जाते हैं। आज हम यही देख रहे हैं जब बहुत से लोग प्रभावित हुए सराग वक्ता के मुख से, सराग गुरु के मुख से सुन करके, और अंत में गुरु गया और अपने आप भक्तों की सारे भक्तों का जीवन नष्ट कर दिया। इसलिए इस विषय में विशेष करके सावधान रहना है। दूसरी बात हरिभक्त उसमें भक्ति रसामी सिंधु में बतलाया है, कृष्ण दीक्षा शिक्षा सद्गुरु से ग्रहण करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप भजन करने से ही हो जाएगा, कृष्ण से संबंध हो जाएगा, किंतु यह सर्वथा विपरीत शास्त्र के विपरीत बात है। श्रील जीव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान का तात्पर्य बतला है, जो दिव्य ज्ञान को देते हैं कृष्ण से संबंध कर देते हैं, हमारे अनर्थों को दूर कर देते हैं, वो गुरु हैं। दिव्यम ज्ञानम ही अत्र मंत्रे भगवत स्वरूप ज्ञानम, यहाँ पर जीव गोस्वामी ने बतलाया है गुरु मंत्र देने के बाद में यह बतलाएगा, या साधु को यह जानना चाहिए दीक्षा के बाद में, हमारे जिस मंत्र से दीक्षा हुई है उसके उपास्य कौन है, उस उपास्य से हमें किस प्रकार का संबंध है, उनके प्रति मंत्र के जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनके प्रति हमारा सेवा की भावना होनी चाहिए, उनके प्रति हम सबसे पहले प्रपत्ति स्वीकार करेंगे, प्रपत्ति माने आप जो कुछ कहेंगे हम वो करेंगे, उनके चरणों में हम शरणागत होंगे, छह प्रकार की शरणागति है, और अंत में उनके चरणों में हम निवेदन करेंगे, आत्मनिवेदन करेंगे। ये पांच अंग हैं दीक्षा के बाद के। यदि इन पांचों अंगों को हमने अच्छी तरह से समझ करके उसके अनुसार में भजन नहीं किया तो कभी भी हमारा अनर्थ दूर नहीं होगा, और बल्कि रही सही जो श्रद्धा होगी कुछ दिनों के बाद में समाप्त हो जाएगी। इसलिए दीक्षा के बाद भी साधुओं का संग, हरि कथा का नित्य श्रवण, कीर्तन नियमित रूप में कुछ कुछ होना चाहिए। गृहस्थ व्यक्तियों के लिए भी ऐसा ही, वे लोग अपना समय थोड़ा सा निकाल कर सवेरे शाम इन सब विषयों को विचार करके वैसे ही गुरुकरण करेंगे। दूसरी बात, यदि कुछ व्यक्ति गुरु को ही भगवान समझ लेते हैं यह गलत है। गुरु भगवान से संबंध कराता है, गुरु भगवान की सेवा का ज्ञान तत्व भावना देता है। जो गुरु ऐसा नहीं कर सके, शिष्यों के की श्रद्धा को अपने ही चरणों में ले और उनका भोग करे तो उसका तो पतन अनिवार्य है, उसका तो पतन है ही। इसलिए ऐसा नहीं, गुरु भगवान के साथ में, विशेष करके राधा कृष्ण ही परम तत्व हैं, इन कंजुगल के चरणों में शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं, उनको क्रमशः ऊपर उठाने की चेष्टा करते हैं। इसलिए यदि गुरु ऐसा नहीं हो तो शिष्य का कैसे कल्याण होगा। इसलिए इन सब पर विचार करते हुए दीक्षा इत्यादि लेना भी परम आवश्यक है। केवल दीक्षा लेना ही आवश्यक नहीं, इसके बाद में हम साधन भजन कैसे ऊपर उठ सकेंगे, इसलिए साधु मार्ग का अवलंबन करना उचित है। साधु मार्ग क्या है? हमारे रूप गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, हमारे गुरुदेव ने कौन से साधन भजन का मार्ग लिया है और कैसे अपने जीवन का निर्वाह किया है, ठीक उसी रूप में गृहस्थ और त्यागी अपने अपने आदर्शों को सामने रख करके भगवान का भजन करेंगे और नित्य साधु संग इत्यादि करेंगे। किंतु इसके साथ में एक और भी बहुत आवश्यक कार्य है, वो क्या? यदि साधक के हृदय में भजन के रीति नीति के संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, जिज्ञासा माने पूछना, बीच बीच में जहां समझ में नहीं आएगा, साधक गुरुदेव से भक्ति के रीति नीति के मार्ग के संबंध में पूछेगा, प्रश्न करेगा। यदि वो प्रश्न नहीं किया तो इसका मतलब है जो वो भक्ति का अनुशीलन नहीं कर रहा। सभी कुछ साधक नहीं एक ही साथ में जान सकता, इसलिए उसको साधन भजन के तरीके को समझने के लिए गुरु से प्रश्न करना भी आवश्यक है। इसलिए गीता में पहले कहा गया, यदि अर्जुन प्रश्न नहीं करता तो फिर कैसे चलता, इसलिए तद्विज्ञानार्थम गुरु के पास में पहुंच करके, तद्विद के गुरु के पास पहुंच करके उनके प्रति प्रणति, प्रश्न और उनकी सेवा, इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, अन्यथा सर्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकती। एक बात आप लोग जरूर याद रखें, कृष्णार्थ है अखिल भोग का त्याग। कृष्ण के लिए, प्रीति के लिए हम जीवन में समस्त प्रकारों के कर्मशः भोगों को त्याग करेंगे। जीवन का निर्वाह के लिए तो हम चेष्टा करेंगे, किंतु भोगों में आसक्त और लिप्त नहीं होंगे, नहीं तो यह मनुष्य जीवन विफल चला जाएगा। दूसरी बात, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण, कृष्ण के लिए सब समय कैसे प्रसन्न होंगे, गुरुदेव कैसे प्रसन्न होंगे, इसके लिए अपनी सारी चेष्टाएं उसमें लगानी होगी। जिस प्रकार से एक व्यक्ति धन के उपार्जन में अपनी सारी आसक्ति लगा देता है, एनर्जी लगा देता है, भक्त भी ऐसे करेगा। किंतु समझिए, संसार में रुपए पैसे के प्रति जिनकी आसक्ति है, सारा जीवन उसके लगाने संग्रह करने में लगा देते हैं, उनकी गति क्या होती है? बड़ी दुर्गति होती है। किंतु इस दूसरी तरफ में भगवान में ये देने से उसका जीवन भरण भी सब अच्छी तरह से होगा, उसके परिवार वाले भी बड़े सुखी रहेंगे और अंत में भगवान की कृपा उस पर बरस जाएगी। इसलिए इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए निरंतर साधु संग करते रहेंगे, बीच बीच में हरि कथा सुनेंगे। यदि नहीं हरि कथा होती है तो अपने आप सद ग्रंथों को श्रीमद्भागवत, चैतन्य चैतामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और जो दूसरे उपयोगी भक्ति विनोद ठाकुर के जैव धर्म इत्यादि ग्रंथ हैं उनका अनुशीलन करें। संक्षेप में मैंने आपको बतलाया, अभी हमको जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन करना है। हमारा वाहन भी मोटर कार आ गई है, इसलिए हम लोग जाएंगे, इसलिए आप लोग इसी थोड़े से ही संतुष्ट होंगे। गौर प्रमानंदे हरि। विष्णु जी का हरि कृष्ण कैसा रहा, ठीक रहा, समझ में आया लोगों के? हाँ हाँ जरूर देंगे, अवश्य देंगे, ठीक। आज शिवरात्रि सती देवी को लेकर के दर्शन करने गए और वहाँ उनको चारों तरफ से परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया। रामचंद्र जी उस समय में लक्ष्मण को लेकर के विलाप कर रहे थे, सीता जी को अपहरण करके लंका में ले गया था रावण, और वो मनुष्यों की भांति फुट फुट करके रो रहे थे। पार्वती सती देवी ने प्रश्न किया, जे प्रभु एक तो निराकार परब्रह्म है और आप इन किनको प्रणाम कर रहे हैं? ये तो साधारण मनुष्य ये भी नहीं जानते जी हमारी स्त्री को कौन ले गया और स्त्री के लिए विलाप कर रहा है, आसक्त व्यक्ति की तरफ, कामी व्यक्ति की तरफ में आप इसको प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं ठीक प्रणाम कर रहा हूँ, यदि तुमको शंका इस विषय में हो तो जाकर के परीक्षा ले सकती हो, ये हमारे परम आराध्य हैं। सती जी ने सोचा ये परीक्षा कर लेनी चाहिए। शंकर जी आगे बढ़ गए और सती देवी ने सीता जी का रूप बना करके रामचंद्र जी के सामने गई और वहाँ पर रामचंद्र जी हासीते 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 कर करके विलाप कर रहे थे। कभी गोदावरी से पूछ रहे हैं, कभी नर्मदा, कभी पशुओं से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं हमारी सीता कहाँ गई, कभी मूर्छित हो रहे हैं। सती जी ने अपना ठीक सीता जी का रूप बना करके ज्यों गई, किंतु राम ने उसे देखा नहीं, वो दूसरी तरफ में चले गए सीता जी को खोज। अब रामचंद्र जिधर जाते हैं उधर ही सीता जी का रूप बनाए हुए सती जी चारों तरफ में घूम रही हैं। अंत में रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, माता जी आप अकेली इस वन में क्यों टहल रही हैं, शंकर जी किधर गए? ये सुनते और उनको प्रणाम किया, ये देखते ही बड़ी लज्जित हुई और उन्होंने कहा जी सर ये कैसे जान लिए? इसलिए निश्चित रूप में ये परब्रह्म है। फिर आंख बंद करके उनको ज्यों ही प्रणाम किया, आंख खोलने के बाद में देखा राम लक्ष्मण और सीता सर्वत्र ही दिखाई पड़ रहे हैं, जिधर देख रहे हैं उधर ही पेड़ पौधे सभी सीता राम लक्ष्मण का रूप बना लिया। थोड़ी देर के बाद में फिर वो साष्टांग प्रणाम किया, जब उठी तो देखी उसी प्रकार से राम सीता जी के प्रेम में विवल होकर के हासीते हासीते कर रहे हैं। सीता जी बड़ी घबराई और अपना रूप छोड़ करके सीता जी का सती जी के वेश में जब शंकर जी के पास में पहुंची तो वो उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा परीक्षा किया, उन्होंने फिर झूठ बोल दिया जी नहीं हम क्या परीक्षा करेंगे, आप सब कुछ जानने वाले हैं इसलिए मैंने परीक्षा नहीं की। किंतु शंकर जी ने वो तो सभी कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने देखा ये सती जी ने सीता जी का रूप बना करके और उनकी परीक्षा की है। साथ ही साथ उन्होंने भी मन ही मन में प्रतिज्ञा की यदि इन्होंने हमारी मैया का आराध्या देवी का रूप बनाया है अब इनसे हमारा अब स्त्री का संबंध नहीं रहेगा, इसलिए इनको हम माता के रूप में ही समझेंगे। उस दिन से उनका यह भाव टूट गया कि हमारी ये पत्नी है। पीछे से जब उनका व्यवहार ऐसे होने लगा कि सीता जी को सती जी को अपने सामने गुरु के रूप में जैसे आसन देते हैं वैसे देने लगे, सती जी समझ गईं और उन्होंने अपने पिताजी के यज्ञ में अपने इस शरीर को छोड़ दिया और फिर दूसरे जन्म में उमा हो करके फिर सीता जी के शंकर जी के साथ में उनका विवाह हुआ। इसलिए ये वाल्मीकि रामायण इत्यादि से यही प्रमाणित होता है कि रामचंद्र जी उनके आराध्य हैं। राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जब रामचंद्र जी ने श्वेत बांध रामेश्वर में शंकर जी की मूर्ति स्थापित की, उस समय लोगों ने कहा कि रामेश्वर की जय हो। रामेश्वर माने कौन? राम के जो ईश्वर हैं उनकी जय हो। देवताओं ने कहा यह गलत है, राम भी ईश्वर हैं और शंकर जी भी ईश्वर हैं। इतने शंकर जी की मूर्ति फट गई और आवाज आई कि तुम लोग सभी असत्य कर रहे हो, राम ही जिनके ईश्वर हैं वो हैं रामेश्वर, इसलिए शंकर जी के भी आराध्य श्री रामचंद्र जी हैं। दूसरी बात, हम कृष्ण लीला में भी ऐसे ही देखते हैं, उसमें लिखा है वैष्णवानंग यथाशंभु, वैष्णवों के गुरु शंकर जी हैं, इसलिए वृंदावन में जहां जहां भी शंकर की मूर्ति है, जैसे गोपीश्वर महादेव गोपी बन करके राधा कृष्ण की सेवा की चेष्टा की है, भूतेश्वर गोकर्णेश्वर और जितने भी हैं वो धाम के रक्षक हैं। सब समय शंकर जी श्रीमद्भागवत के अनुसार में कृष्ण का भजन करते हैं, यहाँ तक कि उनके प्रणाम मंत्र को कहा गया है कि जय वृंदावनामनी पते जय सोम मौली शनक शनंदन सनातन नारदिड गोपीश्वर ब्रज विलास युगांगी पद में प्रेम पर्यच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। शंकर जी राधा कृष्ण के प्रेम को भी दे सकते हैं, ऐसा लिखा है, नारद इत्यादि के भी वंदनीय हैं, ऐसे शंकर जी का जरूर ही आदर करना चाहिए, उनसे भक्ति की भिक्षा मांगनी चाहिए। शंकर जी इतने बड़े फल को देने वाले हैं कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे देखा गया है असुरों ने उनको प्रसन्न करने के लिए बेल पत्र बेल फूल बेल के फल से उनको मारा, और मारते ही शंकर जी प्रसन्न हो गए और बोले जी क्या चाहते हो, उनके अभिलाषा को पूर्ण कर देते हैं, इसलिए शंकर जी को अवघर्दानी कहते हैं। संक्षेप में उनके जीवन के संबंध में थोड़ा सा बतलाया, अगले दिन अभी हम तुरंत निकलने वाले हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि, ठीक है, बहुत अच्छा।
हे गुरुदेव, हे कृष्ण, कृष्ण प्रभु, हाँ महाराज।